सेवा, एक सब सेवा जब हम देखा जाए कृष्ण कृष्ण बांसी हाथे लिए द्वारका जाए ना मोर पाखा लिए जाए ना क्यों कुछ ओखने दरकार की अरे एखने गोपी राखे इधर मान भंग कपे मार के पाए तादे पाए से दीता है बांसी उधर चलने के लिए छावर पर दीता है मोर पाखा ओखने से दीता है और उधर का टाइम ये एक चीज भी दिए दी कि धमक दिए दे कोठा तहादे मान टान चले जाए एखने की दरकार सतभ हमार को समय मान हो যে গোপীগণ অত আদর করেন আমাদের না তখন কৃষ্ণ মজিয়া সত্য ভামার এই সত্রাজি সরকারকে এখন বাহার করো আমার রাজভবন থেকে আর থর হরি কম করে তাহার ওখানে হাত জোড়ে উপস্থিত হয়ে গেল গোপী রায় কম করবে কি কৃষ্ণকে ওখান থেকে একেবারে টান দিয়ে দিবে বলবে যে লঙ্কা একে বাহার করো তো লঙ্কা ধর তাহাকে বাহার করে দিয়ে আসবে এই হচ্ছে প্রেম সেবা এটা ব্রজ ছাড়া আর কোথাও নেই ব্রজ সেবার মধ্যে আর সুবল সীতানে ইত্যাদি সেবা ব্রজ সেবা খুব বেশি বড় কিন্তু তাহার যদি তুলনামূলক বিচার করা যায় তখন রাধাকুণ্ডেতে তার সখারা কেউ যাবে যেতে পারে যেখানে রাজ হচ্ছে ওখানে সখারও যাবে কি যশোদামা ওখানে যাবে ওখানে সেবা কিছু করবেন ওখানে গিয়ে খাবার দিয়ে রাত্রের সময় সে যশোদামা নন্দ বাবা যাবেন যেতে বাবা তুমি খাও আগে তাকে শোয়াবেন কি করবেন ওখানে তাহাদের প্রবেশ নেই এই জন্য সেবার অগোচর হচ্ছে কি এই গোপীগণের সেবা এই হচ্ছে সনাতন ধর্মের নিত্যের মধ্যে আবার অরুণ নির্যাস হচ্ছে এই সেবা এই হচ্ছে সনাতন ধর্ম চৈতন্য মহাপ্রভু এইসবগুলি দেবার জন্য এসেছেন আমি একটু আউটলাইন দু চারটি লাইন বললাম এরপরে আপনারা এর বিশদ বাচ্চা শ্রীপাদ বৈষ্ণব মহারাজের নিকটে আপনারা আমি বেশি দের বসতে পারিনি আমার একটা অসুস্থ শরীর এই জন্য আমাকে আর ক্ষমা করবেন আমি বসতে পারব না এরপরে বৈষ্ণব মহারাজ আপনাদের সম্বন্ধে সনাতন ধর্ম সম্বন্ধে কিছু বলুন গৌর প্রেমানন্দ
নহীঁ করেঙ্গে নহীঁ করেঙ্গে নহীঁ করেঙ্গে নহীঁ করেঙ্গে এক বার কানে সে সম্ভাবনা রয়েছে কি কর ভি লেঙ্গে ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक लाइन है ये हम कहेंगे जो कुछ हो जाए मैं नहीं करूंगा नहीं करूंगा और नहीं करूंगा तो वैसे उसमें बतलाया गया है हरे नाम तीन बार का कहते और गति नहीं है गति नहीं है और गति नहीं हरि नाम के बिना गति नहीं है गति नहीं है और जोर देने के लिए कहा है विश्वास दिलाने के लिए नहीं है हेलो इसके बिना और इसलिए दृढ़ता के लिए उस चीज को कहा गया और यही नहीं उसमें एव शब्द लगाया गया है एव मैंने ही निश्चित नई गति है नई गति है नहीं बिना हरि नाम के यदि कोई आदमी ये सोचता है बिना भगवत भक्ति के बिना हरि नाम के हम जीवन में सुखी रह सकते हैं कदापि नहीं होगा कदापि नहीं होगा और कदापि नहीं होगा कौन कह रहा है भगवान कह रहे नहीं होगा अनुभव के साथ में कभी भी दृढ़ता दिखलाने के लिए ऐसा कहा जाए कोई आदमी घर में रूठ गया कोई खिलाने की चेष्टा नहीं खाऊंगा और नहीं खाऊंगा नहीं खाऊंगा कभी है कभी इसलिए दृढ़ता के लिए शास्त्र में बतलाया गया अपने लिए कहा है माम एव तीन जगह बतलाया है हमारी शरणागति हमारी भक्ति ही जगत के लिए कल्याणकारी है और कुछ नहीं इसलिए माम एव तीन बार ऐसी प्रतिज्ञा की है किंतु विश्वास हम लोगों को नहीं है नहीं हुआ क्या हो गया
माया का नाम है जो
नवदीप धाम में जो भक्ति होती है वो साधन है, और वृंदावन की जो भक्ति है वो साध्य है। है तो वो भी साध्य, जैसे कोई वृंदावन में मथुरा में नवदीप में साधन करता है, क्या साधन करता है, हरि नाम करता है, महाप्रभु की साधन करता है, भजन करता है। किस लिए? ब्रज में राधा कृष्ण की हम सेवा कर सकते, ये जो राधा कृष्ण की सेवा है यही साध्य है। तो वहां पर धाम की कृपा और कृष्ण ही महाप्रभु के रूप में गए हैं, साधन के लिए सब सुगमता वहां कर देते हैं, और थोड़े से साधन में हो सकता है। इसलिए वहां पर महाप्रभु जी की यदि दास रूप में सेवा की जाएगी, भजन की जाएगा, तो उन्हीं को हम राधा कृष्ण के रूप में देख सकेंगे, वहां पर साधन करेंगे, और वृंदावन में राधा कृष्ण की सेवा में हमारी गति की जाएगी। पहले सेवा नहीं होगी, पहले साधन करना होगा। जैसा हम साधन बतला रहे हैं, प्रेम का विकास करना, हमारे अंदर में प्रेम है इसका विकास करना है। कैसे होगा? उनको सुनेंगे, सुन करके वैसा ही अपने हृदय को ढालेंगे, हृदय से काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष कलह संसारिक वस्तुओं की लालसा, इनको पहले निकालना है। किंतु निकालने में आप लोग या हम लोग समर्थ नहीं हैं। वो होगा कैसे, निकलेगा कैसे? निकलेगा ये सब चीजें यदि हम भगवान का भक्ति जितना करते जाएंगे, भक्ति बढ़ती जाएगी, ये सब चीजें धीरे धीरे हट जाएंगी। किंतु कैसे? एक बड़ा भारी डकैत, लाखों खून करने वाला ये वाल्मीकि जी अपने पूर्व जीवन में रत्नाकर दस्यु और नारद जी से भेंट हो गई, नारद जी के ऊपर उनका विश्वास हो गया। तो जब बैठ गया और ये लोहे का जो मुद्गर है, गदा है, इसको फेंक दो, धनुष बाण फेंक दो, किसी की जीव हिंसा मत करना, किसी को अब सताना मत, एक चीटी तक को भी नहीं मारना, उसको भी कष्ट न पहुंचे, और यहीं पर बैठ करके भजन कर, राम राम कर। तो राम राम तो कर नहीं सका, मरा मरा करने लगा, उनके आदेश नहीं होने से वहां से उठा नहीं, खाना पीना तो छूट ही गया, यहां तक कि टट्टी पेशाब वो भी बंद हो गया, और उठा ही नहीं, उसके ऊपर में दीमक लग गए, हजारों वर्ष लग गए, हजारों वर्षों के बाद में उसके हाड़ भी अब गलने लग गए थे, उस पर दीमक खा रहे थे, और वो उठा नहीं, कितना कठोर साधन, और सब भगवान भक्ति उसके हृदय में आई, भविष्य भूत वर्तमान सब कुछ जान गया, रामलीला का वर्णन रामलीला होने से पहले ही कर दिया सर, और जगत के वंदनीय बन गए। और उनकी तुलना में हम लोगों का साधन देखो तो कैसा साधन, खा भी रहे पी रहे, महाप्रभु जी ने कंसेशन किया, खाओ पियो सब करो, घर का काम करो, किंतु सवेरे शाम भगवान का स्मरण तो कर लिया करो, और हरे नाम करो, इसमें न पैसे की जरूरत है, न साधन की जरूरत है, न ऐसे दिन रात बैठ करके बैठने की जरूरत है, कुछ करने की जरूरत, बस कुछ हरे नाम करो, और सब गुरु का पादाश्रय करके उनके नियमों के अनुसार में तुम हरिनाम करो, और जैसा करते हैं वैसे अपने को लाओ, धीरे धीरे ईर्षा द्वेष कलह सब कुछ निकल जाएगा, और धीरे 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 भगवान की भक्ति बढ़ती जाएगी, अपने आप अनुभूति होगी।
कौन है?
हाँ तो गया है, आ गया है ना? नहीं भाई, संसार में सभी लोग सुखी होना चाहते हैं, कोई हाथ उठाओ तो, जैसे मैं बहुत दुखी रहना चाहता हूँ और सब समय हमारे ऊपर में संकट और दुख आए, कोई चाहेगा? कोई भी ना चाहता है
संसार में एक जैसा भी व्यक्ति है, बहुत गरीबा है, कोई भी योग्यता भी नहीं है या कुछ है,
तो सुखी होने के लिए वो क्या करता है? क्या करता है? उसको दूसरे का सहारा लेना आवश्यक है। कैसे सहारा? सहारा लेना अनिवार्य है। जन्म हुआ, बच्चा अपने आप खाएगा? कोई खिलाएगा तो बिना सहायता के वो नहीं खा सकता। पढ़ना चाहता है या घर के लोग पढ़ाना चाहते हैं? अपने आप पढ़ लेगा, उसको सहारा चाहिए कि नहीं चाहिए? सर्व सहज रूप में बदला है, सहारा चाहिए। मान ले कि पढ़ लिख लिया, सब कुछ हो गया, अब उसको पैसा कमाना है, किसी की सहायता की जरूरत है, सहारे की जरूरत है कि अपने आप हो जाएगा? अपने बाप का, परिवार का है, या गवर्नमेंट का सहारा लेना, या किसी धनी व्यक्ति का सहारा लेना, किसी बड़ी कंपनी का सहारा लेना, या अपने पास पड़ोस के लोगों का सहारा? बिना सहारा का हो जाएगा? बिना सहारे के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। एक छोटी सी कहानी है, कोई एक गरीब आदमी बादशाह अकबर के पास में गया। अकबर ने उसे बुलाया, ये किस लिए आए हमारे पास में? तो हम आपके पास में आए हैं, हमारे पास में पैसे नहीं है, आप सहनशाह हैं और मैं कुछ आपसे चाहता हूं। तो उसने आंख बंद किया और अल्लाह का स्मरण किया और उससे मांगा कुछ। तो इसने फकीर या उस व्यक्ति ने कहा कि आप आंख बंद करके क्या कर रहे थे? तो मैं भगवान से या खुदा से, अल्लाह से मैं दुआ मांग रहा था, ये आपको मैं दे दूं। आप उनसे दुआ मांग रहे थे तो मैं क्यों नहीं उनसे ही दुआ मांगू? आप जैसे निर्धन है, मैं भी ऐसा निर्धन ही हूं, तो आपसे दुआ मांगने के लिए हम नहीं आए, मैं भी उन्हीं से दुआ मांगूंगा। तो क्यों नहीं इस विषय के लिए भगवान का ही सहारा पकड़ा जाए? तो ये भजन करना माने भगवान का सहारा लेना है। यदि सुखी होना चाहते हैं तो भगवान का जरूर सहारा लेना पड़ेगा, इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं। यदि हम सहारा लेना चाहते हैं तो हम भगवान को सुखी क्यों करना चाहते हैं? भगवान के लिए इतना कष्ट क्यों करते हैं? इसलिए यदि हम सुखी रहना चाहते हैं तो जैसे हम किसी कंपनी में नौकरी कर उस कंपनी को सुखी बनाना चाहते हैं पहले, तब तो आपको कुछ देगा। यदि किसी धनी आदमी के यहाँ आप कोई काम करेंगे, उसको खुश करेंगे, तो वो खुश होकर के तब आप तो कुछ देगा। तो ऐसे ही आप यदि सुखी होना चाहते हो तो सबसे पहले प्रभु को सुखी कीजिए, वो प्रसन्न होने के बाद में आपको सहज ही रूप में ले आओ, बेटी आ जाओ। विनोद बिहारी जी उधर में छिप करके क्या कि उनको कहिए आने के लिए, और वो माता जी को भी इधर में बुलाओ। आप सारे विश्व को घूमकर मलेशिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, बाली, बहुत देशों में घूमकर भगवत भक्ति का प्रचार कर सिद्धाम नवद्वीप में गए। विशाल रूप में हम लोगों का व्यास पूजा हुआ, गुरु महाराज के साथ वार्षिकी अनुष्ठान हुआ, उसमें देश विदेश से हजारों लोग उसमें आए। अब सुंदर रूप से अनुष्ठान हुआ। इसके बाद में भी नवद्वीप परिक्रमा अभी शब्द समाप्त हुई, जिसमें 15,000 आदमियों ने भाग लिया। छोटी सी जगह, जैसे आप लोग छोटे से जगह में यहाँ पर बैठे हुए हैं, छोटी सी जगह कैसे 15,000 आदमी उसमें आ जाए, बड़ा आश्चर्य, बड़ी आश्चर्य की बात। और किसी को कोई तकलीफ नहीं, तकलीफ होने पर उसको सुख मान रहे हैं, बड़े आश्चर्य की बात। हम लोग 15,000 आदमी को एक साथ में भोजन नहीं दे सकते, चावल दाल आलू काफी फल इत्यादि सब उसी में सब्जी दे दी और एक खीर बनाया नसीम पल्ली में। 15,000 आदमी को खीर देना एक साथ में और खिलाना सहज बात नहीं। 15,000 तो हमारे आदमी और वहां के कितने आदमी जुट गए और छुट जाता। और इतना सुंदर परमान वहां का खीर जो याद रहेगा। ये महाप्रभु जी की कृपा है, महाप्रभु जी इसीलिए आए, उसी की कड़ी चल रही है। साधारण आदमियों के लिए ये बातें नहीं, साधारण मान के लिए कुछ उसमें सबके के लिए, जिसके आदमी आदमी सब पालन करने के लिए क्यों इसका कारण है, सभी लोग वो सुखी होना चाहते हैं। चैतन्य महाप्रभु इसी दिन जगत में पधारे। सबके अंदर में एक कॉमन चीज है, सभी सभी में कुछ कुछ प्रेम है, स्नेह है, भले ही वो कुछ विकृत रूप में प्रकाशित हो रहा हो, आसक्ति के रूप में या स्वार्थ के रूप में, किंतु है वो प्रेम। जहाँ कहीं वो थोड़ा सा पाता है, जहाँ थोड़ा सा वो प्रेम प्रीति पाता है, तो वो पशु हो, पक्षी हो, यहाँ तक कि फूल पौधे इत्यादि भी आकर्षित हो जाते हैं। इसी को शुद्ध करके भगवान के चरणों में लगाना है, किंतु यह कौशल सबके पास में नहीं, जो उसके प्रेम को लेकर के शुद्ध करके भगवान के चरणों में लगा दिया जाए और उसे सुखी बना दिया जाए। गुरु प्रदर्शन करने पर भी और कुछ हरिनाम इत्यादि और भक्ति का कुछ अनुशीलन करने पर भी, पालन करने पर भी बहुत सी बाधाएं हैं। त्यागियों के लिए साधन भजन में एक मर्यादा है और गृहस्थों के लिए भी एक मर्यादा है। अच्छी तरह से सुनिए और इसको पालन करने की चेष्टा कीजिए। क्या हो रहा है? गृहस्थ को भी अपने मर्यादा को पालन करना पड़ेगा, नहीं तो हरि भजन ये सीख नहीं सकेगा, साधन ठीक से नहीं हो सकेगा। और त्यागियों को नहीं, अपनी मर्यादाएं हैं।
जैसे गृहस्थ में हम रह रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, अब परिवार में बन अनबन हो गई और चित्त अशांत रहता है, क्या भजन करेगा? यदि पत्नी का पति से प्रेम प्रीति नहीं है और पति का नहीं उससे है, लड़कों से प्रेम नहीं और लोगों से सहानुभूति परस्पर नहीं है, तो फिर क्या होगा, कैसे भजन करेंगे? तो दिन रात कलह में वो भजन चौपट हो जाएगा। अब त्यागी लोग यहां पर हैं, उनकी भी अपनी मर्यादाएं हैं, वहां पर आकर के अपना सब कुछ त्याग करके अब फिर वहां पर स्वार्थ जब आया परस्पर अपना स्वार्थ, वहां पर भी पैसे के प्रति लोभ, अर्थ के प्रति लालसा, हिंसा प्रति हिंसा, प्रतिष्ठा की लालसा, ये सब यदि आई तो टकराव होने से वहां पर भी भजन चौपट हो जाएगा। आजकल संसार में ऐसे ही चल रहा है, त्यागी आश्रम में भी ऐसे ही, गृहस्थ आश्रम में भी ऐसे ही चल रहा है। हम लोगों को बड़ी सावधानी से गृहस्थ रहते हुए भी पारिवारिक क्लेश से कलह से जरा ऊपर उठना हुआ, और त्यागी बनने पर भी वैसा आदर्श, त्यागी होकर के एक छोटा सा महाप्रभु का परिकर छोटा हरिदास पुरी में एक भक्त के घर में महिला की उम्र थी 80-85 वर्ष की, उसके घर के और भी परिवार में लोग थे, स्त्रियां भी थी, लड़कियां लड़के, और एक त्यागी व्यक्ति छोटा हरिदास महाप्रभु का प्यारा बहुत मीठा कीर्तन करता था, महाप्रभु के कीर्तन को बहुत पसंद करते थे और कीर्तन सुनाता था, और वो भिक्षा मांगने के लिए गया और महाप्रभु जी ने क्या कहा, अब हम हमारे यहाँ कभी नहीं आए, जीवन में उसके साथ में हमारा कोई संपर्क नहीं रहा और आज से वो अपना मुख हमको न दिखलाएंगे। सन्यासी त्यागी होकर के क्यों गया, ऊपर से देखने से मालूम पड़ता है कि उसका कोई दोष नहीं है, किंतु महाप्रभु जान चाहते हैं यदि त्यागी है तो उसका जीवन साफ रहे, कहीं भी आसक्ति संसार के किसी भी व्यस्त में न रुपये पैसे में, न किसी स्वार्थ में, न किसी परिवार के किसी व्यक्ति के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने ग्राम के प्रति, अपना कोई नहीं, अपना बस कृष्ण है, अपना ब्रज है, एकांतिक रूप में वहां पर जब भी सब कुछ छोड़ा है तो सब छोड़ करके सचमुच में आओ, दिखावने के लिए नहीं, और सदा के लिए छोड़ दिया, उसने खाना पीना छोड़ दिया, रोने लग गया, संत दामोदर जी के यहां गया, नित्यानंद प्रभु जी के यहां गया, राय रामानंद जो महाप्रभु के बड़े प्रिय हैं उनके पास में गया, उन लोगों को बड़ी दया आई, महाप्रभु से निवेदन किया कि प्रभु जैसा है बच्चा है, गया था वहां से आपके लिए चावल मांग करके उनके घर से लाया, आप उसे क्षमा करो, अब नहीं करेगा, कहे नहीं मैं यहां पुरी में नहीं रहूंगा, मैं दूसरी जगह चला जाऊंगा, बस उन्होंने उठाया अपना डोर और कॉपी, उनके पास और कुछ नहीं, गोविंद तुम हमारे डोर कॉपी लो चले, यहां नहीं रहना है, ये हमारे भी धर्म को भी गड़बड़ करेगा। कृष्ण भजन में यहां करने लिए आए और आसक्ति दूसरी जगह लगाएंगे, मैं इसको नहीं चाह सकता, घर में रह करके करें। उन्होंने लोगों ने कहा जी हम आपसे क्षमा मांगते हैं, आप पूरी से मत छोड़िए, जो आपने किया है ठीक है, हम लोग मान लेते हैं। जब वो सफल लड़का नहीं हुआ तो वो चला आया प्रयाग में, और आकर के वहां पर महाप्रभु का नाम स्मरण करता हुआ भगवान का नाम स्मरण त्रिवेणी में प्रवेश कर लिया, प्राण छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद में पुरी में महाप्रभु जब स्नान करने के लिए जाते तो हवा की तरंगों में उसी का गान बह करके आ रहा, प्रवाहित होता गया। किसने कहा ये तो छोटे हरिदास का ये स्वर आ रहा है, क्या बात हुई क्या? इतने में प्रयाग से कोई महाप्रभु का भक्त आया और बोला, महाप्रभु जी आपने कृपा नहीं की, उसे क्षमा नहीं की, वो जा करके महाप्रभु त्रिवेणी में जाकर के अपने प्राण को विसर्जित किया। महाप्रभु जी ठीक हुआ, बहुत अच्छा हुआ, किंतु वो उसकी आत्मा वहां आकर और वहां से ही महाप्रभु की कीर्तन सुना रही है। महाप्रभु जी ने उसके ऊपर में कृपा की, दोष उसका कुछ नहीं था, अपने परिकरों के द्वारा ही दूसरों को भगवान शिक्षा देते हैं। एक 84 वर्ष की महिला, वो भी महाप्रभु जी की परम भक्त, उसके यहां से कुछ चावल मांग करके लाया थी, इसलिए महाप्रभु जी को भोजन कराने के लिए। दोष क्या था? वो तो सर्वज्ञ है, हो सकता है उसके घर में कोई लड़की हो, उसके ऊपर में नजर पड़ी हो। त्यागी बाबा, तुम अपनी बहन को, अपनी माँ को छोड़ करके आया है, अपनी पत्नी को छोड़ करके आया है, अपनी प्रतिष्ठा को छोड़ करके आया, रुपये पैसे कारोबार सबको छोड़ करके आया, फिर उसी यही यदि कर रहा है, महाप्रभु नहीं क्षमा करेंगे। ये आदर्श उनके लिए होना चाहिए, सबको छोड़ एकांतिक रूप में भगवान का भजन करें, दूसरों को भजन कराए। समर्थमान यदि ऐसा गुरु है, महाप्रभु जैसा, महाप्रभु चाहते थे एक मिनट में उसको बदल सकते थे, किंतु नहीं, उसके द्वारा उसको शिक्षा देनी थी सारे समाज को। ये सब शिक्षाओं हमको लेनी चाहिए गृहस्थ लोगों के लिए, वैसा ही आदर्श। घर में स्त्री ने, पुत्र ने, पत्नी ने, परिवार के लोगों ने, सभी लोगों ने हरि नाम लिया। अब कलह किस चीज का? किस चीज का कलह? सब मिल करके भजन करो। अब वहां पर अकाल कलह करें, तब तक इसमें मालूम पड़ता है जो भजन करने की स्प्रिया का कुछ अभाव है। इसे सभी मिलकर के, सभी के साथ में, सहानुभूति के साथ में सभी को सहायता करने की स्प्रिया होनी चाहिए। रुपया पैसा कमाना ही जीवन का आदर्श नहीं है। दूसरी बात, गंदे गंदे लोगों की को मन रखने का ये भजन नहीं है। महाप्रभु जी कहते हैं, यदि परिवार में कोई व्यक्ति है भजन नहीं करता है, अपना भाई है, बेटा है, दूसरे है, उसके कैसे साथ में व्यवहार करेगा? रूप गोस्वामी इसके लिए उपदेशामृत में कहते हैं, देखो उसके साथ में विरोध मत करो, उसके साथ में पारमार्थिक आदान प्रदान मत करो, उसे मत कहो जैसे भजन का जब जबरदस्ती उसको गुरु पर मत चढ़ाओ, ऐसा करो, ऊपर से मत पढ़ो उसके ऊपर नहीं, पारमार्थिक आदान प्रदान मत करो, और उसके साथ में साधारण रूप में जैसा व्यवहार है तैसा करो, आसक्त मत हो, उसका कल्याण करूंगा ही, ऐसा मत करो जोर जबरदस्ती। हाँ, भीतर से प्रेम के साथ में, स्नेह के साथ में उसको ऐसा करो। इसलिए उसके साथ में परमात्मिक व्यवहार मत करो, किंतु और जो विचार है उसको ऊपर से मुलायम से मधुर रूप में बोल तो सकते हैं। यदि इस पर भी नहीं होता है, तसजिए कोट बैरीशम जद्यप परम स्नेही, जिनके प्रिय नाम तजिए कोट बैरीशम जद्यप परम स्नेही, सजऊ पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी, गुरु बल सजऊ कंत ब्रज बनी सन भय जग मंथन कारी। इस अवस्था में उस गंदे परिवेश को छोड़कर सब विरोधों का समाधान करके, अच्छा भैया हमको इस जीवन में हमने उत्थान लिया है कि हमको भगवान का भजन करना है, अतः जब देखते हैं कि सभी लोग विरोधी हैं, तो मैं भजन करने के लिए जहां भी जैसे भी होगा भगवान तो हमारी रक्षा करेंगे ही, खुश होगा। अथवा और एक परिस्थिति है, भगवान का इतना प्रेम हो जाए जो अपने से सारा संसार भूल जाए, ऐसा सारा संसार भूल जाए, उस समय बस कृष्ण कृष्ण की धरती, हाँ कृष्ण आप कहाँ, हाँ कृष्ण मेरे प्राण निकल रहे हैं, यदि ऐसी स्थिति हो जाए तो फिर घर को छोड़ दे, वो छोड़ देगा, छोटे अपने आप छोड़ देगा घर। इसलिए इस अधिकार में यदि कोई छोड़ता है या संसार के सभी लोग यदि उसके विरोधी हो जाते हैं, जैसे मीराबाई के सभी लोग विरोधी हो गए, तो छोड़कर फिर चली आई। इसी स्थिति में जब कृष्ण की अनुभूति हो गई तब मेरा आपको स्नेह आशीर्वाद है। हाँ, ऐसी स्थिति में कच्छड़ो अपनी स्त्री से या पति से लड़ाई हो गई, थोड़ी सी अनबन हो गई, बस अब मैं संसार नहीं करूंगा, मैं चला, किस लिए? क्रोध से। ये नहीं टिकेगा, ये बैराग्य नहीं टिकेगा। वो आप जा रहे हैं वहीं पर नया संसार कर लेंगे, दूसरों का उपचार कर रहे हैं, आप उपकार क्या करेंगे? खुद ही उसी में पड़ करके डूब करके मरेंगे। वैष्णव सदाचार इत्यादि सब छूट जाएगा क्योंकि शक्ति वैसी नहीं है। वैष्णव एडिकेट को पालन नहीं कर सकेंगे, धीरे धीरे हरि कथा नहीं सुनने को मिलेगी, समझेंगे हम ही एक ऐसा हो गया, मैं गुरु हो गया। इसलिए ये सब चीजें आनी चाहिए, भजन का तरीके हैं। इसलिए संसार में रहते हुए भी मर्यादा संसार का पालन करना चाहिए हमें। छोटी छोटी बातों के लिए यदि लड़ेंगे तो फिर भगवान का भजन क्या करेंगे? उसकी उपलब्धि आपने क्या की? गुरु के उपदेशों को पालन कहां किया? प्रेम में साधन में अपना स्वार्थ बलिदान करना होता है, ऐसे नहीं होता। वो ट्रेनिंग कहां से होगी? अपने घर से भी होगी, अपने घर से ही ट्रेनिंग होगी। इसलिए गुरु के चरणों में सब कुछ समर्पण कर दो। जो त्यागी लोग हैं, गृहस्थ लोग भी ऐसा करेंगे, गुरु जी शासन भी करते हैं, सबको मान लेना पड़ेगा। और घर में भी वैसे ही अत्यंत सही स्लो बन करके रहना होगा, तब तो भाई भजन होगा, तब हमारी बातें भी आप लोग मान करके चलेंगे, आप लोग भी साधन भजन अग्रसर होंगे। नहीं तो अपने आप में कलह होगा और गुरु के प्रति अश्रद्धा आएगी। इस बात को समझ रखिए। वो समझे, ओ देखो तो गुरु जी का उन पर स्नेह अधिक है हमारे प्रति, वो कहे ओ गुरु जी का इन पर स्नेह है, इनको ये कुछ अधिक स्नेह। गुरु जी के प्रति श्रद्धा जाएगी और गुरु प्रति श्रद्धा गई और भगवान का भजन भी खत्म हो गया। बातें तो छोटी हैं किंतु बड़ी महत्व की है। इन चीजों को अपने जीवन में आचरण कर करके भगवान का भजन करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु इन छोटी छोटी बातों को भी लेकर के और बड़ी अपने परिकरों के साथ में व्यवहार करके उनको कड़ी सजा दी और दे करके सबको सिखलाए। जंगल में जा रहे हैं महाप्रभु, वृंदावन में आ रहे हैं, उनके साथ में एक ब्राह्मण है और एक और व्यक्ति है। चलते चलते महाप्रभु जी ने कहा, तुम्हारे पास में कुछ भजन करने के बाद में मुख शुद्धि है? मुख शुद्धि माने क्या? कोई आंवला ले लेते हैं, कोई सौंफ ले लेते हैं, कोई हर ले लेते हैं, कोई और कुछ ले लेते हैं, है तुम्हारे पास में कुछ? मैंने हाँ है। क्या है? तो छोटी हरी का एक टुकड़ा, दो चार टुकड़े हैं मेरे पास, तो दे दो। तो एक लिए करते महाप्रभु मुख में दे दिया, चल गया। दूसरे दिन भोजन करने के बाद में कुछ उन्होंने कहीं से साग पत्ता लाया और किसी घर से चावल लाया या कुछ लाए और लेकर के कुछ बनाया और महाप्रभु जी को खिलाए, अपने भी खाए, कभी उपवास कभी कुछ, चलते जा रहे। तो उस दिन कुछ खा करके, तुम्हारे पास में और है? हाँ, ये तुम कल के दिन ही रख रहे हो और त्यागी बन रहे हो, आप हमारे साथ में मत चलो, नहीं तो तुम्हारी प्रवृत्ति हमारे अंदर में आ जाएगी, फिर भजन नहीं होगा, संग्रह करने की प्रवृत्ति आ जाएगी। उन्होंने कहा, आप आज से काम पकड़ते हैं, आप आज क्षमा कीजिए, अब मैं नहीं हुआ। फिर ये त्यागियों का महादर्श महाप्रभु जी ने। गृहस्थों के लिए भी ऐसे आदर्श दिखलाए। इसलिए इन सब आदर्शों को मान करके हम चलेंगे तो सहज रूप से भजन कर सकेंगे, और जब योग्यता होगी संसार छोड़ने की तो फिर वो प्रभु उसकी व्यवस्था करेंगे। उन पर भी थोड़ा सा निर्भर कीजिए, गुरु के ऊपर नहीं। जब तक नहीं हो रही है अपनी भक्ति को छिपा करके, जैसे कपूर को हम छिपा करके रखते हैं नहीं तो गंध उड़ जाएगी, ऐसे अपनी भक्ति को हृदय में छिपा करके मत दिखले ये हमारी भक्ति है। खूब सावधानी से रहिए। इसकी शिक्षा कैसे दी महाप्रभु जी ने? महाप्रभु जी संन्यास लिए लेकर के समस्त नवद्वीप के लोग, करोड़ों लोग महाप्रभु को दर्शन करने के लिए भीड़ जमा हो गई। सती मैया भी मायापुर से आई उनको शांतिपुर में दर्शन करने के लिए, रोने लगी। महाप्रभु जी उनके चरणों में गिर गए, अपना सिर रख दिया और मैया रो रही है। उन्होंने कहा कि मैया हमने बड़ा भारी अन्याय किया है, मैंने तुमसे पूछे बिना मैंने संन्यास ग्रहण कर लिया, मैंने अन्याय किया है, मैं स्वीकार करता हूं, यदि कहो तो मैं संन्यास छोड़ करके तुम्हारे पास आ जाऊं। ठीक। मैया ने रोते रोते कहा जब ले लिया संन्यास तो ले लिया, अब मैं तुम्हें छोड़ने के लिए नहीं कहूंगा। तुम एक बात करो, जब तक यहां रहो दो चार दिन मैं रसोई बनाऊंगी और तुम पानी, और मैं निकट से तुम्हें देख सकूं, और तुम हमसे दूर मत जाना, वृंदावन में मत जाना, मैं बूढ़ी हो गई हूं इतना नहीं जा सकती चलकर, उसमें पैदल रखा रास्ता, इसलिए जगन्नाथपुर में रहेगा तो तुम वहां से गंगा स्नान करने के लिए आएगा, या मैं वहां जाकर के जगन्नाथ जी के दर्शन के लिए जाऊंगी तो तुम्हारा दर्शन मिल जाएगा। और एक छोटा सा राजा का लड़का वहां पर आया, वो कौन था? रघुनाथ दास, राजा का लड़का, महाप्रभु के दर्शनों के लिए छटपटा रहा, बहुत धनी राजा का लड़का, बहुत सुंदर। रोने लग गया जब मैं आपके साथ चलूंगा, उसके माता पिता बांध करके रखते और वो छटपट करता कि घर छोड़ करके चला गया। एक मोटी सी रस्सी लेकर के उसको बांधा, वो रस्सी मोटी सी जानते हैं क्या है? बड़ी सुंदरी, अपूर्व सुंदरी, रूपवती, गुणवती, एक किशोरी से उसकी शादी कर दी। इससे संसार में और कोई बड़ा बंधन नहीं, किंतु वो बंधन में कुछ असर नहीं कर सका। तो वो रोने लगा जब मैं आपके साथ में चले। महाप्रभु ने उसे समझाया, मरुकट वैराग्य ना कर लोक दिखाइया, जथा यज्ञ विषय भूया अनाशक्त है, भालो ना खाइबे, भालो ना परिबे, अमानी मानव भाई कृष्ण नाम सदा रहे। क्या उपदेश दिया? अभी तू परिपक्व नहीं हुआ है, छटपटाते ही नहीं, उसके लिए कुछ और चीज की जरूरत है। तुम जाकर के अपने इस वैराग्य को नहीं रक्षा कर सकता वहां मेरे साथ, इसे अभी घर पर रहो, छटपटाओ मत। मरकट वैराग्य काम नहीं करता। मरकट वैराग्य माने क्या? मरकट माने बंदर। हम लोगों में आजकल जो वैरागी हैं उसमें 99% हम मरकट वैरागी हैं, 99%, 1% शुद्ध वैरागी होता। इसलिए मरकट वैरागी होने के कारण ही हम लोगों को गुरु से नहीं बनती, वैष्णव से नहीं बनती, अनबन हो जाती है। कारण क्या है? अपना कुछ स्वार्थ है ना, इसलिए तो परस्पर विवाद हो रहा है। या तो गुरु ठीक नहीं है या चेला ठीक नहीं है, दोनों में कोई एक तो ठीक है वो होगा ना। या ऐसा भी हो सकता है कि गुरु और चेला दोनों ही ठीक ना हो, ऐसा भी हो सकता है। कलयुग में ये सभी चीजें ठीक है, तब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि गुरु शुद्ध होने पर भी सिद्ध शुद्ध मिलना बड़ा भारी कठिन है। तो महाप्रभु इसलिए उनको शिक्षा दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? मरकट वैराग्य ना। मरकट माने बंदर। बंदर धोती नहीं बनता, कपड़ा नहीं बनता, बंदरी भी साड़ी और कुछ नहीं, घर में रसोई उनकी नहीं बनती, खेती भी नहीं करते और नौकरी भी चाकरी भी नहीं करते,
अपना घर भी नहीं है, है कुछ भी घर पास कुछ नहीं,
घरों के छतों पर डोलेंगे, पेड़ों पर डोलते हैं इधर उधर, विवाह शादी में कुछ खर्च नहीं, संतान पालन में भी कोई खर्च नहीं, उनको बड़े पक्के वैरागी हैं, किंतु उनकी नजर कहां रहती है? दो चीजों पर देखते हैं, कहां चीज घर में, किस कोने में, कहां क्या चीज है, और लपक लेते हैं। यदि ऐसे नहीं होगा तो पहले तो डरा देते हैं और वहां पर जाकर के ले लेते हैं, और दूसरी नजर रहती है बंदरी की बंदर पर, बंदर की बंदरी पर। बस संतान पैदा करना और कोई भी भोग की चीज है उसे लपक करके छीन लेना दूसरों से, और उनको डराना भी, उनकी चीज लेना भी और उन्हीं को डराना धमकाना, ये बंदरों का मरकट वैराग्य कहलाता है। वो वैराग्य नहीं, सबसे भोगी वो जानवर है। तो तुम ऐसा मत करो, भजन करते 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 हमारे आदेशों को पालन करके कहीं भी संसार में रह करके आसक्ति मत करो, संसार में रहो आसक्ति मत रहे, मरकट वैराग्य ना करो, लोक देखाइया जथा योग्य विषय भोजो अनासक्ति, विषयों को भोगो, हवा नाक से लो नहीं तो मर जाएगा, कुछ भोजन खाना जरूरी है, सब व्यवहार से, सब नौकरी से, सब उपाय से उपार्जन करके कुछ ठाकुर जी को भोग देकर करके उनका अवशिष्ट तुम ग्रहण करो, किसी चीज में आसक्ति मत रखो, न पति में, न स्त्री में, न पुत्र में, न घर में आसक्ति रहेगी भगवान के चरणों में। कोई कोई कहते हैं कि गुरु के चरणों में आसक्ति रखो, खबरदार ये कि गुरु नहीं के साथ है, वो आपकी आसक्ति लेकर के कृष्ण के चरणों में यदि निवेदन कर देता है तो वो गुरु है, अन्यथा आपकी आसक्ति को लेकर के आपकी आसक्ति का वो भोग करता है तो वो गुरु नहीं है। गुरु के ये सब लक्षण है, आपके किसी भी चीज को लेकर के भगवान के चरणों में आसन करते, आपका संबंध भगवान से यदि स्थापित कर देता है तो वो गुरु है, और नहीं तो भगवान से संबंध न स्थापित करके अपना स्वयं संबंध स्थापित करता है और आपके सब चीजों का मालिक बन जाता है, या तुम्हारे रुपयों का मैं मालिक हूं, तुम्हारे सब चीजों का मैं मालिक हूं, और उसका भोग स्वयं करता है, तो सुगुरु क्या हुआ? इसे महाप्रभु जी कहते हैं अमानी मानव भय कृष्णाम सदा लगे, अमानी किसी मान की लालसा मत करो, किसी चीज में आसक्त मत हो, अनासक्त रह करके विषयों का यथा योग्य रूप में भोग करो। सूरज के बिना लाइट के हम रह नहीं सकते, अनासक्त, पानी पिए बिना नहीं हो सकते, ठाकुर जी का भोग लगा करके पानी, जो चीज भगवान को निवेदन करके नहीं ली जाती है वो पाप चीज है, इसे किस रूप में रह करके और उनके प्रति अपना जो व्यवहार है उसको मन व्यवहार रखो, आसक्त मत हो किंतु व्यवहार ठीक रहना चाहिए एक दूसरे के प्रति, दूसरों को ऐसा हम व्यवहार करें कि वो भक्ति मार्ग में अधिक बढ़ जाए, पति करे, पति का कर्तव्य है कि स्त्री को ऐसे सहायता करे जो उनकी पत्नी भगवान के चरणों से अधिक निकट ले, बच्चे को इस प्रकार से शिक्षा दें कि बच्चा भी भगवान की तरफ निकट ले, पत्नी इस प्रकार से व्यवहार करे पति के प्रति जो उनकी सब प्रकार की सुविधाएं करें जैसे वो भगवान की तरफ में बढ़ सके, यदि इस प्रकार से होगा तो फिर विवाद किस चीज का रहेगा, और नहीं तो विवाद होगा वह संभारी, और यह विवाद पहुंचेगा गुरु के यहाँ, गुरु से भगवान के प्रति, गुरु को भी छोड़ेंगे और भगवान को भी छोड़ देंगे, ये भगवान बेकार का, इसलिए इन चीजों को अच्छी तरह से समझ करके हम लोगों को चलना चाहिए। महाप्रभु जी की इच्छा से वो चले गए घर, घर जाकर के अब बड़े काम करने लगे, जमींदारी का काम करने लगे, देखने लगे, जमींदारी से पैसे आते उसका वसूल करके पिताजी के हाथों में दे देते, एक पैसा अपने लिए नहीं रखते, पॉकेट खर्च हमको, अभी भाई है काम कर रहा हमारे साथ में तो उसको पॉकेट खर्चा चाहिए, बेटा है तो बेटे को भी पॉकेट खर्च चाहिए, सबको पॉकेट खर्च चाहिए, पहले ये सब नहीं, भगवान की सेवा के लिए पॉकेट खर्च मत रखो कुछ, चाहे गृहस्थ हो चाहे त्यागी हो। तो इस तरह से वो काम करने लगे, और मैया को मैया भी कहने लगे, इस तरह से सब चलने लगे। बीतक थे वो भजन करने लगे धीरे 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 धीरे, इतनी अधिक प्रीति बढ़ी कि रोक न सके। नित्यानंद प्रभु जी की उनके प्रति कृपा हुई और अंत में आसानी के साथ सहज रूप में छोड़ करके महाप्रभु के चरण में पहुंचे।